특급까지나?
저거 우아야 되나?
왜 구슈토가 이해나?
군주 따자오.
비디 보고 싶나?
꾸치가 이해나? 굿데 아코.
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोड्यूसर हमारी नुखबत मलिक हैं और हमारे इंजीनियर हैं कॉर्नेलियस। आज के प्रोग्राम में वैसे आमतौर से होता है कि हमारे जो मेहमान होते हैं हम उनकी आवाज़ की झलक आपको सुनवाते हैं, लेकिन आज के मेहमान के लिए हम उनसे एक नस्ल पीछे चलते हैं और लीजिए सुनते हैं ये झलक। सामीन, ये खूबसूरत धुने आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, जिसको कहते हैं सदाबहार गीत हैं। और नशाद साहब की ये मौसीकी है, उनका नाम था शौकत अली नशाद। और नशाद साहब के बेटे हैं अमीर अली, जो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर अली साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम
भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमीर अली। और होता यह है कि हम देते तो फनकार की आवाज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का, औलाद का फख्र होता है उसके वालदैन, और आपके तो एक बहुत ही मशहूर वालिद हैं। जैसे ही आपने उनका नाम लिया तो बहुत मुझे खुशी हुई कि आपके ख़ानदान के बारे में जान के। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, आपके वालिद साहब के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके मौसीकी हम खुद भी सुनवाएंगे, आपसे भी सुनेंगे। लेकिन ये बताइए मुझे कि मैं अभी विकीपीडिया में देख रही थी तो आप माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई हैं, तो कौन कौन मौसीकी से कौन कौन वाबस्ता है? मतलब बहुत खुशी की बात है, लेकिन कितने बहन भाई हैं?
हम माशाल्लाह 16 हैं।
अच्छा
अच्छा, तो 16, लेकिन अब 8 भाई थे और 8 बहन, 8 भाई 8 बहनें
जी।
तो 4 भाई गुजर चुके हैं इस दुनिया से।
अच्छा,
तो अभी 4 हैं, बाकी मैं हूँ, मेरे से बड़े हैं वो इस लाइन में नहीं है, फिर उनसे बड़े हैं वो अमेरिका में होते हैं, शिकागो में। तो उनसे बड़े इमरान नशाद, वो सिंगर हैं, वो भी उन्होंने फिल्म के लिए प्लेबैक किया है।
अच्छा,
फिर मैं सबसे बिल्कुल लाइन में बिल्कुल सबसे छोटा हूँ। मैं
सबसे छोटे आप घर के बच्चे हैं। अच्छा, तो आपके एक और भाई भी कंपोजर थे जिन्होंने गालमन फिल्म ज़ेवर में भी,
वाजिद अली नाशाद उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा सीरियल के बहुत सारे ओएसटी, ड्रामा सीरियल का गश्त बहुत हिट सीरियल था इधर पाकिस्तान में।
अच्छा,
तो उसका उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर और उसका ओएसटी उन्होंने किया, और बल्कि ये पाकिस्तान में कहने बल्कि ड्रामा की जो तारीख है ना उसके अंदर टाइटल सॉन्ग का जो रिवाज है वो वाजिद अली नाशाद साहब ने डाला था।
अच्छा,
दश ड्रामा सीजन से शुरू हुआ था। जी जी,
तो मेरा ख्याल है कि मुझे क्योंकि ये बात मालूम नहीं थी, वरना मैं निकालती उनका कुछ इसका कोई टुकड़ा, लेकिन अगर आप हमें सुनाएगा आगे ताकि हमारे सुनने वालों को याद आए कि ये कौन सा ट्रैक था।
जी, उसके अंदर मेरा एक गाना था नुमान एजाज और अधिका उर्दू के ऊपर पिक्चराइज था
जी।
वो मेरा बल्कि डेब्यू सॉन्ग भी था, जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग थी मेरी।
अच्छा,
वो आबिद अली की मिसेस हुमैरा आबिद, उन्होंने मेरे साथ ड्यूट किया था वो गाना। वो थोड़ी सी एक लाइन आपको सुना देता हूँ।
जी जरूर,
शेयर कर देता हूँ। हमें तो इस दश्त बे अमां में मोहब्बतों के ही लगने रबाब कहता है मुझसे चाहता। ये बड़ा मशहूर गाना हुआ था।
अच्छा,
फिर इसका एक टाइटल सॉन्ग भी था वो ऐसी
जी
दश्त का। फिर इसके बाद तो चलते रहे बहुत सारे सीरियल और फिल्मों के भी गाने। फिर पहली फिल्म के अंदर मैडम शमी मारा ने मुझे ब्रेक दिया हाथी मेरे साथी ने।
अच्छा,
तो उसमें मेरे चार गाने थे, उसका टाइटल सॉन्ग भी था हाथी मेरे साथी, और एक ठंडा ठंडा पानी मोहसिन खान साहब से पिक्चराइज हुआ था। और फिर उसके बाद फिर बहुत सारा स्कोर है, फिर करा में नजारा एक मेरा बहुत चूड़िया फिल्म
बहुत था वो तो सॉन्ग बहुत जबरदस्त।
तो इससे पहले जो है मेरे वो 60-65 गाने हैं, लेकिन करा में नजारा तो बिग हिट था।
अच्छा,
अभी तक सुना जाता है माशाल्लाह।
तो चलिए, आपका जो डेब्यू फिल्म थी आपने कहा हाथी मेरा साथी, तो एक को हमें सुना दीजिए हाथी मेरा साथी से, कोई जो आपकी को याद हो। मुझे पता है कि ज़बानी तो याद नहीं होती हर चीज, थोड़ा सा एक आध मुखड़ा अगर हमें सुना दें आप।
एक हो मेरा चन्ना जी के साथ मेरा डुएट था, उसमें बड़ा मशहूर था वो भी गाना
जी।
नैना 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 तुझे मुझसे प्यार है ना, बोलो ना बोलो ना, एक बार कहूँ सौ बार कहूँ, है ना हाँ हाँ हाँ, बोलो ना 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 ना।
वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, तो ये आमतौर से देखा ये क्या है कि जो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती, मुझे बल्कि बड़ी हैरत होती है कि जब भी फिल्म लाइन से कोई हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं कि आपके बच्चे फिर आए या नहीं आए इस शोबे में या मुसीकी में, तो आमतौर से लोग कुछ ऐसे बददिल से होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं और तो कोई नहीं आया, हम ही हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके वालिद ना सिर्फ ये कि खुद एक बहुत ही मारूफ मौसीकार थे, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी आने दिया इस लाइन में। तो क्या आप लोगों ने फिर मुसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल की किसी से, या वैसे बस शौकिया फनकार?
मेरी थोड़ी सी बैड लक, मेरा इतना ज्यादा टाइम अपने वालिद साहब के साथ गुजरा नहीं। आई वाज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड जब मेरे फादर इस दुनिया से कूच कर गए। तो
अच्छा,
लेकिन ये है कि बेसिक्स जो है वो उनसे मैंने कुछ ख्याल और कुछ रागों की कुछ थोड़ी सी नो हाउ उनके साथ में भी टाइम गुजरा मेरा। लेकिन प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग वो फिर मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वाजिद अली नाशाद, वो भी फौत हो गए सन 2008 में, उन्होंने मुझे फिल्म में भी ब्रेक दिया और वो मौसीकार थे। तो ये हाथी मेरे साथी में उन्हीं का म्यूजिक था।
अच्छा,
तो उनसे बाकायदा फिर ट्रेनिंग जो है वो मैंने ली है मौसीकी की, इसके अंदर क्लासिकल भी है। और
अच्छा, यही पूछ रही थी मैं कि क्लासिकल भी सीखा आपने, लेकिन आपने नीम यानी लाइट क्लासिकल सीखा आपने।
हाँ जी, असल में देखिए प्लेबैक सिंगर का जो ग्राफ जो है ना थोड़ा आप दूसरे सिंगरों से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो इसलिए कि प्लेबैक सिंगर को कुछ भी गाना पड़ सकता है, उसको कवाली का भी गाना आना चाहिए, उसको गजल का अंदाज भी पता होना चाहिए, उसे गीत भी पता होना चाहिए, उसे कोई रोमांटिक सॉन्ग भी आ सकता है उसको, कोई क्या कहते हैं ऐसे सेडक्टिव गाना भी, तो प्लेबैक का जरा ग्राफ थोड़ा सा इसलिए बड़ा होता है कि उसको हर टाइप के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गा चुका हूँ, रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए। तो रेडियो जो है वो तो मदर है क्या कहते हैं तमाम आर्टिस्टों की, यानी कह लें कि रेडियो से जो आपको तलफ्फुज और अदायगी जो मिलता है वो वहां से हम लोगों ने जितने भी पाकिस्तान के बड़े लेजेंड गुजरे हैं वो तमाम रेडियो से ही।
जी हाँ बिल्कुल।
तो रेडियो पे भी मैंने तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े मौसीकार हैं उनके साथ काम किया, वजीर अकबर साहब हैं, अमजद बॉबी साहब थे और मुजाहिद हुसैन साहब, इन सब लोगों के साथ काम किया, लजनी साहब के साथ, रवाई गलीना साहब और वजीर मतलब ये सारे लोग जब तक के हयात थे इन लोगों के साथ काम किया मैंने। तो बस मेरी गुड लक ये है कि मैं बहुत अर्ली एज के अंदर मुझे चांस मिल गया और मेरा गाना भी हिट हो गया, तो बहुत सारे लोगों के साथ मुझे काम करने का ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने इतने बड़े लोगों के साथ मैंने काम।
अच्छा आमिर अली, आपसे बल्कि आपके नाम से ही मुझे ये बात याद आई कि आपके वालिद साहब का नाम नशाद था जो फिल्मी ना उनको नाम दिया, और मेरे ख्याल नक्शब साहब ने दिया था उनकी फिल्म नगमा में।
जी ये जी नक्शब साहब थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे
जी।
तो नक्शब साहब भी जो है ना वो फिर मूव किया तो पाकिस्तान 1964 में नक्शब साहब, क्योंकि सारी फैमिली तो 47 के अंदर यहाँ पे हमारी मेरे वालिद साहब के यानी मेरे दादा और मेरे चाचा वगैरह सब यहीं पे थे, लेकिन वहाँ पे बॉम्बे के अंदर बहुत ज्यादा मसरूफिया बहुत बिग हिट्स हो गई थी, अब्बा की फिल्में जिंदगी या तूफान, बारह दरी, तो फिर आना चाह रहे थे वो, लेकिन फाइनली 1964 के अंदर वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जितना भी म्यूजिक है वो मेरे फादर का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे हिट है उसके अंदर, आप कह लें जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, उनका ही तसव्वुर है, जो किया है आज वादा वो लागी रे लागी लगन, मतलब मेहदी हसन साहब, नूरजहां, शहनाज, इन सब लोगों ने, मेरे वालिद साहब को, रफी साहब ने भी गाया, इंडिया से लेके पाकिस्तान, इंडो पाक के मौसीकार थे नशाद साहब।
लेकिन मैं ये कहूंगी कि ज़ाहिर है कि वालिद तो आपके थे ही, लेकिन बेटे भी कुछ कम नहीं है। तो चलिए हम आपका एक गीत सुनते हैं चूड़ियां का, मुझे बहुत पसंद है और मुझे पता है सुनने वालों को भी बहुत पसंद है।
थैंक यू भाई।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਕੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम हाफिज साहब. जी
माशाल्लाह, ये जो आपने आज जिस फनकार का आज इंतखाब किया है ना, माशाल्लाह, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ.
जी शुक्रिया. तो कुछ
और अमीर अली साहब.
जी जी
अमीर अली साहब से बात हो सकती है?
जी बिल्कुल बात हो सकती है, और ज़रा जल्दी से अगर आप कर लें बात. जी
हाँ,
जी, जी 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 बात कीजिए आप. वो हमेशा सुन रहे हैं आपकी बात. आप सब कर सकते हैं बात उनसे. जी बोले.
जी अस्सलाम वालेकुम सर.
जी वालेकुम अस्सलाम जनाब.
सर आज मैं 100% खुश हूँ, क्योंकि अमीर अली जैसे गुलकार से मेरी बात हो रही है. और सर क्या हाल है, ठीक है?
सर अल्हम्दुलिल्लाह.
मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, मुझे पता है कि आपका दिल ज्यादा बातें करने को चाहता है, लेकिन देखिए प्लीज आप ये सोचिए कि अगर ये फोन कट गया तो फिर आपका सवाल रह जाएगा, इसलिए प्लीज सबसे पहले सवाल पूछ लिया करें आप लोग.
अच्छा सर, सर ये बताएं कि मतलब इस वो गाने के अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती है?
जी ये तो बल्कि मैं भी पूछना चाह रही थी, बताइए अपनी मसरूफियात.
गाने के अलावा भी मसरूफियात वो गाना ही है, ये 24 घंटे का काम है भाई.
क्योंकि आप प्रोफेशनली भी कंपोजर और म्यूजिक स्टूडियो वगैरह आपका है, तो रिकॉर्ड करते हैं
ऑल द टाइम. ऑल द टाइम म्यूजिक ही है.
अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है कि आजकल म्यूजिक और आर्ट में ये एक खूबी हो गई है कि आप एक बतौर प्रोफेशन, क्योंकि पैसे हैं इसमें, उसे अपना सकते हैं. इस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन मियाँ महमूद को मैं ले लूँ इस्लामाबाद से. जी मियाँ महमूद साहब.
जी
वालेकुम सलाम.
अस्सलाम वालेकुम.
जी जी वालेकुम सलाम.
मैडम मैं मियां महमूद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से.
जी
आपने जो प्रोग्राम शुरू किया तो आपने प्रोग्राम में सारे गाने डाले नौशाद के, सारे इंडियन गाने.
हाँ, तो इसलिए क्यों नहीं कहते ना
नौशाद ने पाकिस्तान में, तो उस पाकिस्तान में उन्हें उससे ज्यादा पसंद.
नहीं नहीं, हमें ये तो हमें
दुख हुआ है कि आपने आपने इंडियन फिल्म में गाने देकर हमारी तोहीन कर दी है.
क्यों इसमें बात सुनिए महमूद साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो पहली बात ये कि इसमें तोहीन की कौन सी बात है. मतलब एक आदमी अगर इंडिया में गा रहा है तो उसमें उसकी इज्जत और बेइज्जती का क्या फर्क होता है? मैं अजीबोगरीब बातें मुझे कभी समझ नहीं आती अमीर अली. मैं बल्कि आपसे पूछूंगी, क्या ये आप अपने वालिद की इसको तौहीन समझते हैं कि उनके जो बड़े सदाबहार नगमे हैं जो आज तक लोगों के जहन में ताजा है, वो उनकी तौहीन है या उनकी इज्जत अफजाई है वो गाने?
नहीं, ये इज्जत अफजाई है. असल में देखिए, पहले तो पार्टीशन से पहले तो सब कंबाइंड थी ना.
जी हाँ,
सन 1950-55 तक कंबाइंड काम होते रहे. मैडम नूरजहां ने भी डेब्यू किया दिलीप कुमार साहब के साथ. दिलीप कुमार साहब का भी
फिल्मों में भी काम किया, बल्कि उन्होंने तो मैडम नूरजहां ने.
तो निसार बज़मी साहब हमारे कंपोजर पाकिस्तान के,
ये जो जज्बातियत है ना, बल्कि आप मुझे बताइए.
इंडस्ट्री असल में पहले इंडस्ट्री कंबाइंड थी, लेकिन वो एक महमूद साहब एक अच्छी बात कर रहे कि वो आपने पाकिस्तान का जितना स्कोर है ना, मैं अभी पीछे ये जिक्र कर चुका हूँ, अगर महमूद साहब मुझे सुन रहे हैं तो मैं जरा मैं इसको क्लियर कर दूंगा इस बात को कि मैंने पहले जिक्र किया कि
जी हाँ.
पाकिस्तान के अंदर जितना स्कोर है मेरे वालिद साहब का, इंडिया में तो सिर्फ 32 फिल्में है मेरे वालिद साहब की, बाकी 100 से ज्यादा फिल्में पाकिस्तान में है, सारा पाकिस्तान का सारा हिट.
और आपने शुरू में ही बात की उनके बारे में, मेहदी हसन साहब के, माला के, नूरजहां के आपने गाने बताए. बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो भूली बिसरी यादें हैं, उनको दोहराना ज्यादा जरूरी होता है, जो उनका पाकिस्तान का काम है. मतलब मेहदी हसन साहब की आवाज में हर एक को याद है, इतना वो गाना बजा है और उनकी ज्यादातर तमाम चीजें इतनी रेडियो पर आती रही है. तो इसको इस कदम इज्जत और बेइज्जती के मैार ना बनाइए. कौमी विकार जो होता है वो दूसरी बहुत सी चीजों में होता है, बल्कि ये तो एक फनकार की 64 में आए थे ना आपके वालिद?
मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा, देखें अपनी वतन की मोहब्बत के अंदर इंडिया जैसा जहाँ पे इतना फ्रूटफुल बिजनेस है ये मौसीकी का, वो सब इतना भरा मेला मेरे वाले साहब छोड़ के अपने वतन की मोहब्बत के अंदर यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान, सारा कुछ छोड़ के, यानी कि वहाँ पे मेरे वाले साहब फ्लॉप थे, वहाँ पे भी जिंदगी में या तूफान, जिंदगी या तूफान और बारादरी, बड़ा भाई, सारी फिल्में वहाँ पे हिट स्कोर था मेरे वाले साहब का।
तो यही बताइए
तो साहब जो थे डायरेक्टर
जी,
असल में हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के अंदर भी मुस्लिम का ही राज रहा है, और जितने भी उसकी जो परवरिश की है हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में, वो सब मुस्लिम का, उसमें 70% हाथ मुसलमानों का है।
आज भी म्यूजिक में सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स में, कंपोजिशन में। अच्छा, तो मैं ये पूछूंगी कि कैसे फैसला किया उन्होंने आने का, क्योंकि एक दुश्वार फैसला था ना पूरी एक भरे जमे हुए घर को लेकर आने का।
देखिए, सारे तो रिश्तेदार बहन भाई सब यहीं पे थे
जी,
तो आना ही था। वो जब तक उनका वो फिल्मों का वो जो उन्होंने पकड़ी हुई थी, जो फिल्में जो साइन की हुई थी, वो सारा कंप्लीट करके वो फिर उन्होंने मिस कमिटेड तो नहीं ना हो सकते थे, वो कमिटमेंट अपनी पूरी करके फिर वो पाकिस्तान आए।
अच्छा।
नक्षत्र साहब भी पाकिस्तान मूव किया उन्होंने।
अच्छा।
तो यहाँ पे आके फिल्में बनाई उन्होंने, सारीगिरा और बहुत सारी फिल्में बनाई यहाँ नक्षत्र साहब ने।
तो हम एक सेकंड का, कुछ चंद सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं एक प्रोमो के लिए, उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं।
मेरी कहानी,
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और
अच्छा, हमारे कुछ कॉलर्स जो हैं वो हमें फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किए, मुकद्दस रजा है, आशिक हुसैन खासगली हैं, सरदार अली नाज बलो साहिबान हैं, और आशिक हुसैन खासखेली साहब ने आपसे फरमाइश की है अमीर अली अपनी पसंद का कोई गाना सुनाने की, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आज उनके क्लब की सालगिरह है, उसका नाम है सिंधी लिसनर्स क्लब नवाबशाह का, तो कोई अगर सालगिरह की मुनासबत से कोई गाना याद है जहन में जो सुना दें आपका या
सालगिरह की मुनासबत से? मैं, क्या नाम है इनका भाई का?
इनका नाम तो आशिक हुसैन खासखेली और उनके क्लब का नाम है सिंधी लिसनर्स क्लब, जिसकी सालगिरह है आज।
अच्छा, सिंधी लिसनर की सालगिरह है।
जी जी जी।
सालगिरह के हवाले से मैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सुना सकता हूँ।
हाँ, जरूर।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू।
बहुत खूब, थैंक यू। तो चलिए, आपकी फरमाइश तो बिल्कुल आपके क्लब की मुनासबत से पूरी हो गई। और अच्छा, अब मुझे बताइए, मुझे तसव्वुर करती हूँ तो आपके घर का एक बड़ा अच्छा सा तसव्वुर आता है कि एक मुसीकी का माहौल है घर में, हम हर वक्त कुछ ना कुछ बच्चों से सुन रहे हैं या बड़े कुछ सुना रहे हैं, ऐसा ही था? या तो अम्मियाँ, जो आपकी अम्मी और बहनें थीं, उनका कोई पार्टिसिपेशन था म्यूजिक में या बिल्कुल नहीं था, उनको बहनों को इजाज़त नहीं थी?
नहीं, बहनों को तो नहीं थी इजाजत, बाकी ये है कि घर में एटमोसफेयर था, ऐसे सारे बड़े आर्टिस्ट आते थे, मैडम ऊना जैसे कहने और मेहंदी पंजाब। असल में पहले मौसीकी हमारे गाने इस वजह से ज्यादा हिट होते थे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया जाता था, पहले रिहर्सल्स बहुत ज्यादा होती थी, तो जितने भी ये हमारे लेजेंड आर्टिस्ट, जितने भी लेजेंड सिंगर गुजरे हैं, ये बाकायदा इनकी रिहर्सल होती थी, एक एक वीक रिहर्सल चलती थी, वो रिहर्सल सारी घर पे ही होती थी। तो वाले साहब वो घर में हमारे जो क्या कहते हैं म्यूजिक रूम बना हुआ था, वहाँ पे ग्रैंड पियानो पड़ा हुआ था, तो हारमोनियम था और सारा वहीं पे म्यूजिशन की आते थे, जो रेसल्स होती थी, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, तो कई गाने ऐसे हैं मैं मुझे याद होती थी ट्यून, जाहिर है अपने फादर के साथ टाइम गुजरता था, आर्टिस्ट गाने से पहले मुझे ट्यून याद होती थी, तो कई गाने ऐसे मेहदी साहब को मैंने भी ऐसे कुछ, वो मेरे से कहते थे हाँ भाई छोटू तुम्हें याद है कौन सा गाना बनाया है चचा ने नचार साहब ने, मैंने कहा जी वो ये ऐसे वो गाना है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सा, तो मतलब ये एटमॉस्फेयर था, जाहिर है एटमॉस्फेयर से तो बहुत ज्यादा लर्न करते हैं ना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वालिद जैसे सबसे ज्यादा किसको समझते थे अपना सही जानशीन म्यूजिक में, अपने कौन से बच्चे को?
मैं ये भी आपको सही कह नहीं सकता, क्योंकि वाजिद साहब ही थे, उनके असिस्टेंट भी उन्होंने किया, मेरे बड़े भाई ने वाजिद ही मैं साथ।
अच्छा।
मैं तो बहुत छोटा था, तो जानशीन वही थे, उनके बाद मौसी के हवाले से, म्यूजिक डायरेक्शन के हवाले से।
तो उनका कैसे इंतकाल हो गया, बीमार थे वो कुछ, क्योंकि वो तो जाहिर है कि एज तो इतनी नहीं होगी।
हाँ, उनको ट्यूमर हो गया था, सन 2008 में मौत हुई वाइज का।
अच्छा। तो अब आप अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। पहले तो ये कि आपका एक प्रोडक्शन स्टूडियो है, आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो आजकल तो जिंगल्स वगैरह कमर्शियल बहुत से काम होते हैं, सिर्फ फिल्मों का या टेलीविजन तक गाना महदूद नहीं है, ये रेडियो तक। तो आप ये जो आजकल इलेक्शन का हंगामा है, तो इसमें भी कुछ आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं?
नहीं, इलेक्शन के पिछले जो इलेक्शन हुए उसके अंदर मैंने काफी काम किया था, इस दफा नहीं इतना किया।
अच्छा।
तो बाकी जिंगल्स वगैरह एड्स वगैरह मेरा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और मेरी गुड लक ये है कि मेरी जब शादी हुई तो शादी के फौरन बाद ये करा मैं नजारा, मैंने रिकॉर्ड किया और ऐसा बिग हिट हुआ। और मेरी जो मिसेज है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरा है।
अच्छा।
और बहुत सारे उन्होंने गाने ड्रामा सीरियल के भी लिखे, एक आधा आधा बादल आधी धूप एक ड्रामा सीरियल था इस्लामाबाद से, उसके अंदर उन्होंने डेब्यू किया, उसमें उन्होंने लिखा। और
तो नाम क्या आपकी बेगम का?
सिंगल्स वगैरह अनिका अमीन।
तो भाई अगर अनिका कहीं सामने है तो उनको दूसरा फोन नंबर उनको दीजिए, और हम उनसे कुछ शायरी भी सुनेंगे, कुछ सुनते हैं कि आपके बारे में क्या कहती हैं अनिका साहिबा। तो आप अगर वो है आसपास हैं कहीं मौजूद या नहीं है घर पे?
जी मैं बुलाता हूँ उनको।
बस ठीक है, तो अभी हम जब कोई गाना बजाएंगे ना तो आप उस दौरान उनको बुला लीजिएगा, दूसरा जो आपका नंबर है हम इस पर उनको कॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी इलेक्शन की बात हो रही थी, तो ये बताइए पिछले साल, पिछले इलेक्शन में यानी 2013 में आपने कोई याद है कोई आपने जो गाना प्रोड्यूस किया हो इलेक्शन के लिए?
मैंने हुकूमत पंजाब के लिए बड़ा काम किया, परवेज की जब हुकूमत थी, क्या कहते हैं, परवेज इलाही के लिए बहुत सारे मैंने हुकूमत पंजाब के जितने भी जो जराती जितने भी थी ना, इसकी मुहिम थी एक उन्होंने चलाई, वो सारा मैंने किया उसके लिए है। और फिर बहुत मैंने जितने भी मल्टी नेशनल है उनके भी मैंने जमी एक आइसक्रीम थी उसका मेरा बड़ा ऐड था।
अच्छा।
फिर डालडा का, जहाँ मामता वहाँ डालडा, वो टाइप के और बहुत सारे मेरे जिंगल जो है वो भी चलते रहे।
मगर खासतौर पे मैं तो इलेक्शन का कहूंगी, इलेक्शन का बताइए अपना कोई गाना, ताकि
इलेक्शन का अभी मुझे अभी इस वक्त राइट ना हो, अभी जेहन में नहीं हूँ, इतने सारे मैंने इन दिनों में किए थे, उन दिनों में मुझे कुछ थ्रेड कॉल्स भी आने लग गए।
अच्छा अच्छा, चलिए फिर हम नहीं सुनते।
आप परवेज इलाही के लिए गाए जा रहे हैं, मैंने 30 से ज्यादा गाने गाए उनके लिए।
अच्छा।
तो आप ये क्या कर रहे हैं, इनकी तो गवर्नमेंट नहीं अब रहने वाली, और ये है वो है। तो उसके बाद से इस इलेक्शन के अंदर मैंने कोई इस्तीफा हिस्सा नहीं लिया। वैसे मैंने सबके लिए पिछले इलेक्शन के अंदर पीटीआई के लिए भी किया मैंने काम, और क्या कहते हैं नून लीग के लिए भी किया। आखिर तो देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी होता है,
बिल्कुल
जो भी कहेगा। अब रफी साहब हमारे इधर पाकिस्तान से माइग्रेट करके उधर हिंदुस्तान गए और वहाँ पे उन्होंने भजन भी गाए।
दुरुस्त। असल में वैसे भी किसी जबान के कोई, अगर आप किसी के लिए मजहबी भी कोई चीज गाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस अपने मजहब से खारिज हो गए, या आप जो है आपका उस मजहब से कोई एहतराम।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत रिलीजियस एल्बम भी मैंने बहुत गाई है, क्रिश्चियंस के लिए भी मैंने बहुत, बाइबल का और जबूर मैंने पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे मैं हूँ, सबसे ज्यादा जबूर मैंने गाई है।
अच्छा।
और हाँ जी,
मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, क्योंकि मैंने आपका देखा कि आपका नोहे और सलाम इस तरह की भी आपके एल्बम्स हैं मौजूद, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने यानी इस्लाम के अलावा आप दूसरे मजाहिब की भी इज्जत करते हैं। ये यही बात मैं महमूद साहब को समझा रही
हूँ। वो अनीका अमीर ने लिखे हैं और मेरी मिसेज ने अनीका ने लिखे हैं वो नोहे।
अच्छा, नोहे जो है, तो आपके गाने कौन सा गाना कौन सा है जो उन्होंने लिखा है जो आपने गाया?
अभी ये मैं यूट्यूब के पर अगर आप सर्च करें, करा मैं तेरे मुखड़े का, ये भी गाना उन्होंने लिखा है।
ये तो मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, तो ऐसा मैं करती हूँ कि मैं वो गाना हम आपको सुनवाते हैं, اور اس کے بعد آپ ہمیں انیقا صاحبہ کو اتنے بلا لیجئے تاکہ انیقا جو ہیں وہ گانا ہمیں سنائیں بھی. لیجئے تو سنتے ہیں یہ گانا اور اس کے بعد ملاقات کریں گے میر علی کی بیگم صاحبہ سے.
ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਤੀ ਚੋਪਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗਨੀ ਮਾਈ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਨੀ ਓ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗਨੀ ਮਾਈ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵੇਖਨੀ ਕਿਉਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਨੀ
تو سامعین مہمان ہمارے نامور مشہور گلوکار امیر علی ہیں اور خاندان کی بات ہو رہی تھی. ان کے والد صاحب نوشاد صاحب شوکت علی نوشاد بہت ہی معروف کمپوزر ہیں ہندوستان اور پاکستان کے. اور ابھی ابھی بات چیت میں پتہ لگا کہ پورا وہ کہتے ہیں نا کہ خانہ تمام آفتاب است, تو ان کی بیگم جو ہیں بہت اچھی شاعرہ اور ڈرامہ نگار ہیں. انیقا نام ہے ان کا میرے خیال. انیقا ہمارے ساتھ ہیں. جی انیقا آپ سن رہی ہیں آواز میری؟
جی جی.
السلام علیکم. آپ لوگ ایک ہی فون پر ہیں الگ الگ ٹیلی فونز پر ہیں؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. آپ کو دوسرے فون پہ بھی ہم کال کر رہے ہیں نخبت کے ان کے پاس دو فون نہیں ہیں. آپ تھری جو آپ کا دوسرا نمبر ہے نا اس کو خالی رکھیے گا. انیقا آپ مجھ سے بات کیجیے لیکن امیر علی صاحب آپ دوسرا فون اٹھائیے گا. نخبت آپ کو ملا رہی ہیں. جی اچھا اب انیقا کچھ بتائیے اپنے بارے میں. پہلے تو اپنے شوہر کے بارے میں بتائیے کیسے شوہر ہیں. گلوکار تو اچھے ہیں ہی آرٹسٹ.
نہیں شوہر بہت اچھے ہیں میرے خیال میں. آئی فیل بلیسڈ آل دی ٹائم کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی اور اتنے اچھے شوہر ملے. اور بہت کمپیٹیبل ہیں وہ میرے لحاظ سے. اور بہت اچھے شوہر ہیں, بہت اچھے باپ ہیں, بہت اچھے بیٹے ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں. سب رشتوں کو دیکھتے ہوئے, یعنی جو انسان ایک اچھا بیٹا ہوتا ہے وہی اچھا بھائی بھی ہوتا ہے, وہی اچھا شوہر بھی ہوتا ہے, اور وہی اچھا باپ بھی ہوتا ہے.
بالکل صحیح.
تو یہ ساری کوالٹیز ہیں ان میں. اور بہت ہمبل پرسن ہے. سب سے اچھی ان کی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ بالکل بھی
میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ جب آدمی میں صحیح معنوں میں جو فنکار ہوتا ہے نا وہ ہمبل ہوتا ہے. اچھا میں ہمیں برابر مسلسل یہی شکایت ہے کہ ہمیں فون پر میسج ملتا ہے جو دوسرا آپ کا نمبر ہے کہ فون نمبر بند ہے. تو ذرا پلیز ان سے نوشاد صاحب سے کہیے کہ اس کو دیکھیں کہ کیوں ہمیں یہ میسج مل رہا ہے بند ہونے کا, کیونکہ ہم ایک وقت میں پھر دونوں سے بات نہیں کر سکتے. تو میرے خیال نوشاد سن ہی رہے ہوں گے ہماری بات امیر علی. اچھا یہ بتائیے آپ کے بچے کتنے ہیں؟
بچے میرے پانچ بچے ہیں ماشاء اللہ, چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے.
جی اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کی سسرال کے لیے تو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی بھری پوری سسرال ہے آپ کی.
ہمارے ہاں اگر فنکشن ہوتا ہے فیملی میں کوئی تو باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت ہی پڑتی.
کتنی لکی بات ہے,
پورا ہال کور ہو جاتا ہے ہم سے. तो और माशाल्लाह अब तो बच्चों के बच्चे और बड़ी हो गई है माशाल्लाह फैमिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंजॉय करते हैं हम सारे गेट टुगेदर्स होते हैं और सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है और वाकई एक ये भी ब्लेसिंग है एक अच्छी फैमिली होना। और मेरा नहीं ख्याल हम बाहर किसी को मिस करते हैं, हम इतने सारे हैं माशाल्लाह।
मैं तो कहती हूँ
प्यार करने के लिए,
बिल्कुल बिल्कुल बड़े लकी खानदान होते हैं, तो वैसे खुदा नजरे बस से बचाए, लेकिन जब सब लोग आप एक जगह जमा होते हैं तो क्या तादाद हो जाती है मिलके, बिल्कुल इमीडिएट
तादाद हो जाती है 170 तक ऑलमोस्ट।
तो अमेरिका में तो शादी में अक्सर जो हॉल है वो बड़े होटल्स वगैरह में 200 की गुंजाइश होती है, तो आप तो खानदान के अलावा किसी को नहीं बुला सकते फिर शादियों में। अच्छा
बिल्कुल, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है बहुत।
अच्छा अच्छा, मुझे खुद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जाहिर इतनी मोहब्बत से तभी आदमी जिक्र करता है जबकि उसके वाकई एक अच्छी सी ससुराल हो और अच्छे लोग हों, सब प्यार से रहते हो।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो अनिका आपके किस ड्रामे का जिक्र था, एक ड्रामे का जिक्र कर रहे थे, वो क्या था
ड्रामे का जिक्र मेरे
के, कोई प्ले था टीवी प्ले?
अच्छा प्ले का
जी
जिक्र कर, हाँ जी मैंने लिखे हैं दो टीवी के लिए, अभी वो अभी अप्रूव्ड हैं, एक शर्त है ड्रामा
अच्छा।
सीरियल और एक दो बातें हैं वो सिटकॉम है वो ना।
अच्छा।
और वो इंशाल्लाह ऑन एयर हो गया, अभी वो अंडर प्रोसेस है, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है सब, अब उसकी शूटिंग शुरू होनी है, प्रोसेस का शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह वो ऑन एयर होंगे पीटीवी से।
तो ये शादी के बाद सिलसिला शुरू हुआ, ये शादी से पहले भी करती थी?
नहीं, पोएट्री तो मैं बचपन से ही करती थी। हाँ। और जब हम मिले, मैं दरअसल इनसे मिली थी गिटार सीखने के हवाले से।
हाँ।
तो वो लव मैरिज है हमारी बड़ी।
अच्छा,
किस्म की
ये बड़ी बड़ी जो है ना, अब बताइए बड़ी कैसे, क्या हुआ था, जालिम समाज आया क्या हुआ?
यानी वो इसलिए हाथ से कि मैं इंगेज थी जब ये मुझे मिले।
हाँ।
और तोड़ के फिर मुझे जब एक इंसान से कंपेटेबल, मेरे लिए कंपेटेबल हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई एक दूसरे से।
हाँ।
और मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी, फिर नहीं ये बंदा ठीक है जिंदगी गुजारने के लिए।
तो कहाँ मिले, कैसे मिले?
मुश्किल से, हाँ
कुछ तो बताइए।
मुश्किल से हुई शादी, लेकिन स्टैंड लिया हमने काफी इस चीज के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया फिर थोड़ी देर में, घर वाले सारे मान गए। और फिर वो है तो लव मैरिज ही, लेकिन अरेंज है हमारी मैरिज।
हाँ, नहीं लेकिन एक बात है कि हीर ने अपने खानदान से तो बगावत की, क्योंकि शायद बगावत तो आपने की शादी नहीं की वहाँ पर, तो क्या गुजरी आपके घर में?
हाँ बिल्कुल, इस शादी का हीरो मैं ही।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिला शुबा आप हीरो हैं इसकी। तो मुतासिर है अभी तक इस बात से, आपकी इस हिम्मत से?
हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है मैंने रखा हुआ है।
तो क्या चीज अच्छी लगी इतनी अमीर अली साहब की, कुछ हमें बताइए ताकि हम पता लगे।
मुझे, मैं इनकी आवाज की सबसे बड़ी फैन मैं ही थी।
हाँ।
मैं तो बहुत दीवानी थी शादी से पहले भी इनकी आवाज की।
हाँ।
और उससे दिन रात बस इनके ही होता था मेरे पास लगा के, बस सीडी प्लेयर और जो भी होता लगा के सुनती रहती थी इनके गाने।
अच्छा।
और बस फिर वो ऐसी फीलिंग्स हो गई कि मुझे लगा कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, और फिर मैंने पहला गाना इनके लिए ही लिखा था,
ये वाला जो था चूड़ियां का।
नहीं ये नहीं ये नहीं, वो था उनकी एल्बम का है, तेरी उसका था कि तेरी हंसी निगाह का इशारा जो मिल गया।
हाँ।
तूने बता है खोया क्या हमारा तो दिल गया।
तो गाती भी है आप साथ
साथ? इनके लिए पहली मैं तो बिल्कुल नहीं गा सकती, अब मेरे लिए आपको सुना देते हैं।
अच्छा,
मैं देती हूँ उनको सुना।
नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अभी मत दीजिए, इतनी जल्दी मत, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। हेलो
जी,
तो ये तो हमें पता लगा कि असल हीरो आप नहीं, असल हीरो तो ये हैं भाई, इन्होंने तो बिल्कुल हीरो वाला काम किया, शादी कर ली आपसे इन्होंने, उनको अपने पुराने जो मंगेतर थे उनको छोड़ के। तो बड़ी खुशी हुई मुझे तो सुन के कि इतनी हिम्मत का काम किया इन्होंने, और खानदान की मर्जी से घर वालों को राजी करके, जिसमें अच्छी बात यह है कि सबकी फिर रजा से हुआ ये काम। अच्छा, तो चलिए अब इनको खराज अकीदत पेश कीजिए, आप खराज तहसीन बल्कि कि आप वो गा के सुनाइए वो गाना जो ये बता रही थी अभी।
जी जी, वो है ऐसे। हाँ। तेरी हंसी निगाह का इशारा जो मिल गया, तूने बता है खोया क्या हमारा तो दिल गया तेरी हस्ती। ये था
तो इन्होंने अपने दिल जाने की बात की है या आपके दिल जाने की, किसका दिल गया जाने के जिक्र है ये इस गाने
में? तो देख ले जो कह रहा है उसी का दिल गया।
अच्छा उन्होंने तो बता दिया खैर कि उनको आपकी आवाज बहुत पसंद थी, आपको क्या बात पसंद आई है अनिका की?
मुझे सारा कुछ ही पसंद आया,
हर कुछ पसंद आया। अच्छा तो अब शादी के बाद भी वही कैफ, कितने साल हो गए शादी को?
जी माशाल्लाह अब 97 में हम लोग शादी कर रहे हैं, 20 साल हो गए
माशाल्लाह। और वही कैफियत अभी भी तारी है?
कैफियत भी अभी तक
है। अच्छा अच्छा ये तो बहुत ही बड़ी खुशी हुई सर। लेकिन आपकी फिर ये बात पसंद नहीं आई कि मुसलसल आपका फोन, बेचारी हमारी नुखबत लगी हुई है आपको फोन करने में लेकिन वो फोन आपका मिल के नहीं दे रहा, बहुत ही कोई नालायक किस्म का फोन है आपका जो
हमारे यहाँ पे कुछ अभी बारिश हुई है इसकी वजह से। हाँ। बहुत सारे वो जो थे क्या कहते हैं मीटर ट्रांसफार्मर भी उसके मोबाइल कंपनी के वो डिस्टर्ब हुआ होगा बहुत ज्यादा, लाइन जो है ना बड़ी मुश्किल से, लेकिन अच्छा। ये एक लाइन है ये आपको क्लियर मिलेगी इंशाल्लाह, इससे हम इंटरव्यू हमारा तमाम हो गया।
हाँ नहीं ये लाइन तो बहुत अच्छी मिल गई। अच्छा अमीर अली ये बताइए मुझे कि आप पंजाबी ज्यादा गाते हैं या उर्दू भी बराबर गाते हैं? पश्तो भी गाते हैं आप?
तो पश्तो गाते हैं लेकिन हमारे
थोड़ा सा आपके फोन का रुख बदलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी
अभी भी थोड़ी थोड़ा सा और अच्छा तो अब आप चलिए पश्तो का कुछ सुना दीजिए हमें, हमारे बहुत बड़ी तादाद में सुनने वाले जो
मैंने वो पश्तो उर्दू में लिख के गाया था।
अच्छा याद नहीं जुबानी?
हाँ वो मुझे उसका एक लफ्ज याद है कि एंड में माँ कड़म आता था। माँ कड़म एंड में माँ कड़म आता था।
इसी को गा दीजिए चलिए देखते हैं आपका कमाल कितना गा सकते हैं आप इसे। तो जी ये कौन सी फिल्म का गाना था आपकी?
ये फिल्म का नाम भी नहीं मुझे पता।
अच्छा
क्या कहते हैं वो शाहिद खान साहब से मेरा ख्याल।
अच्छा अच्छा
पश्तो के हमारे बड़े मशहूर यहाँ के डायरेक्टर भी हैं जैसे कि हीरो हैं तो उनके ऊपर था शायद पूछा है।
तो आप काफी बाहर भी जाते रहते हैं तो कौन से और अपने मुल्क में तो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वगैरह में आप शिरकत करते हैं तो किस गाने की फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है आपसे इसके अलावा चूड़िया के गाने के अलावा?
जी चूड़िया सबसे ज़्यादा तो चूड़िया की होती है और फिर उसके अलावा और मेरा एक गाना था अकाबों का नशीबन सैयद नूर साहब की फिल्म थी
जी
तेरे सर की कसम उसका गाना था वो भी खासा हिट रहा है गाना उसकी भी फरमाइश और फिर रुखसत की फिल्म मेरे गाने।
तो चलिए मेरी फरमाइश पे सुना दीजिए वो तेरे सर के कसम का गाना।
तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम जाने क्या देख कर मर मिटे तुझते हम तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम जाने क्या देख कर मर मिटे तुझते हम अब न दिल की खबर है ना को ना पता चल पड़ा प्यार का एक हंसी सिलसिला ओ एक हंसी सिलसिला तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम जाने क्या देख कर मर मिटे तुझते हम।
वाह वाह बहुत खूब। अच्छा हमारे कॉलर साथ हैं मुमताज अली अंजुम साहब हैं सरगोधा से। जी सेठ मुमताज अंजुम
जी बाजी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम कैसे हैं आप?
अल्लाह करमा जी आप लोगों को ढेर दुआएं करते हैं सुनने वाले। आप आज बड़ी खुशी हुई है बाजी के एक मिसाली जोड़ा آپ اپنے پروگرام میں لائے ہیں پاکستان کا, تو ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. دوسری عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو موسیقی ہوتی ہے یا شاعری ہوتی ہے نا
جی جی
باجی, اس کے لیے کوئی کسی ملک کو ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ایک دوسرے ملک میں جاتی آتی رہتی ہے, موسیقی بھی شاعری بھی اور بہت کچھ.
بالکل.
تو ہم لوگوں کو نا ایسی کام نہیں کرنے چاہیے, ہمارے لیے یہ قابل ساتھ احترام ہے. تو ابھی آپ نے الیکشن کے بارے میں کوئی گانا انہوں نے بنایا کہ نہیں بنایا, تو ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ یہ جو امیروں کے دل میں غریبوں کی جو قدر آئی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ 25 جولائی ہے.
بہت خوب. یہ جو ہے نا آپ تو بے دھڑک سنا سکتے ہیں کیونکہ ہیں آپ ہیں عوام, لیکن ہمارے جو امیر علی ہیں نا, امیر علی ہیں شوبز کے آدمی, تو یہ جو ہے
میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں, پاکستان کے نامور موسیقاروں میں سے ہے.
نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی ایک جو انہوں نے مختلف یہ بتا رہے ہیں نا کہ پہلے ہی بہت سارے فتوے صادر ہو گئے ان کے اوپر کہ آپ فلاں پارٹی کے لیے لگائی گئے اور فلاں پارٹی.
اس ملک میں ہوتا رہتا ہے بس, ایسے ان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے, اللہ رب العزت ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو. تو بہت اچھا لگا ان کا آنا, اور ان کی جو ہماری بھابھی ہیں ان کو بھی سلام اور آداب عرض کرتے ہیں, یہ مثالی جوڑا ہے ہمارے لیے, آپ لوگوں کے لیے بھی ڈھیر آپ کی پروڈیوسر کو باجی کو آداب عرض کرتے ہیں, سننے والوں کو بھی حسب مراتب سلام عرض کرتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ نے تو مجھے اچھی لگتی ہے آپ کی بات, سب کے لیے آپ اپنے پیغامات دے کے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے, اب میں انیقا سے سوال پوچھنا چاہوں گی, وہ چلی گئی یا آپ کو چھوڑ کے یا ہے موجود ہے؟
جی جی ادھر آئیے گا, وہ جی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہے.
سوال تو آپ دونوں سے ہے مگر مجھے لگتا ہے انیقا زیادہ بے دھڑک جواب دیں گی. تھوڑا سا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کا جو شوق ہے موسیقی کا, تو ظاہر ہے کہ فین بھی ہوں گے آپ کی کافی, خواتین بھی ہوں گی, تو انیقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب بہت ساری آپ کی جو قدردان خواتین ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے؟
عورت کی فطرت میں شامل ہے.
نہیں تمہارا انیقا جواب دیں, آپ عورت کی فطرت کیا جانے, آپ کو کیا
نہیں, لیکن یہ بڑی لبرل ہے, مجھے کبھی بھی کوئی کنڈیشن نہیں رہی کسی بھی.
ابھی آپ نے موقع نہیں دیا ہوگا
بہت ساری
ان کو ایسا کوئی ناراض کرنے کا,
ایسا کبھی ہوا نہیں. تو میں نے بہت ساری فیمل آرٹسٹ کے ساتھ میں نے پاکستان کی جتنی بھی ہیں, عمیرہ چنا ہے, عمیرہ ارشد ہے
جی,
فریہ پروین ہے, شبنم مجید ہے, شادیہ مزدور, ان سب کے ساتھ ہی میں گانا گا چکا ہوں. تو یہ میری ساری کلیگز ہیں, تو ہم لوگ ملتے بھی ہیں, فون پہ بھی باتیں ہوتی ہیں, تو کبھی ایسا میری بیگم کی طرف سے کبھی ایسی کوئی کنڈیشن یا کوئی ایسی ہرڈل کبھی آئی نہیں.
ٹھیک ہے, آپ ظاہر
ہے کلیگ میں کام کرنا ہے,
ان کی طرف سے آپ ہی جواب دے رہے ہیں, یہ بات وہ ہے نہیں موجود,
یہ نہیں بات کریں آپ.
ہاں میں سند انہی کی بات کو سمجھوں گی جی. تو کبھی موقع نہیں دیا انہوں نے آپ کو ناراض ہونے کا کسی, کیونکہ ان کی فین بھی تو بے شمار ہوں گی.
ہاں نہیں میرا خیال ہے کہ میں اتنی بڑی فین ہوں ان کی, مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے بڑی کوئی فین ان کی ہو سکتی ہے. تو پھر جیلسی تو وہاں بنتی ہے, آپ کو کوئی آپ کو کٹ کرنے والا ملتا ہے.
اچھا,
میں اسٹل ان کی سب سے بڑی فین ہوں, اور مجھے کوئی اس طرح کا کمپلیکس نہیں ہے جب میں ان کی لائف کا حصہ ہوں. ایک تو یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے میری, اور باقی تو ہوتے ہی ہیں فینس جو, یار یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, اور اس چیز کو آپ ایکسپٹ, ٹھیک ہے آپ کی ایجوکیشن کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے میرے خیال آپ کو, ٹھیک ہے آپ کی ایجوکیشن آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, اور جب آپ پہچان لیتے ہیں کہ آپ کی ورتھ کیا, پھر آپ کو ان چھوٹے موٹے خطروں سے کوئی ایسا وہ ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ٹرسٹ ہے پورا ان کے اوپر, مجھے کبھی انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں کوئی ایسا جیسٹر, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا مجھے کوئی فیڈ بیک بھی ایون ان کے لیے کوئی باہر سے ایسی نہیں ملی کہ کوئی ایسی چیز ہے, اور ادر وائز اگر ملے بھی تو جب مجھے ٹرسٹ ہے ان کے اوپر پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی.
پتا ہے ہمارا یہی بات وہ کہہ رہے تھے بےچارے, امیر علی بھی یہی بات کہتے تھے, مگر میں ان کی بات کو سند نہیں سمجھ رہی تھی. میں نے کہا نہیں ہمارا یہ بات میں انیقا سے پوچھوں گی, انیقا کی بات کو میں, تو اب آپ نے سند دے دی ان کو کہ بہت اچھے اور شریف شوہر ہیں.
اچھا آپ کے بات جی جی
میں پوچھی تھی کہ بچوں میں کسی کو شوق ہے آپ کے میوزک کا؟
بچے ماشاء اللہ, بیٹا میرا ہے وہ 16 ایئرس کا ہے
جی,
وہ گٹارسٹ ہے بہت اچھا. بیٹی ہے میری وہ 18 ایئرس کی ہے, وہ بھی گٹارسٹ ہے بہت اچھی.
اچھا
دونوں بیٹیاں بہت اچھی سنگر, بچے سارے بہت اچھے سنگرز بھی ہیں, اور لیکن ان کی ہے نہیں ہے, بڑی بیٹی جو ہے وہ اے لیولز کر رہی ہے, ابھی پیپرز ہو گئے ہیں اس کے اے لیولز کے نا, تو وہ میڈیکل میں ہے اس کا. چھوٹی جو ہے اس سے وہ آرٹسٹ ہے, وہ پینٹنگ وغیرہ رف ہے اس کا, تو وہ این سی اے جوائن کرے گی, ابھی او لیولز کا ہوگا.
اچھا लेकिन खैर ये सब कुछ करने के साथ साथ म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है कि आप अपना जो भी बने लेकिन आप म्यूजिक भी साथ साथ जारी रख सकते हैं।
नहीं वो तो करते हैं, घर पे घर की हद तक ही करते हैं, बस वो इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के अंदर कि वो बाहर बिजनेस करते हैं।
अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी खराब हो रही है और साथ साथ मैं वैसे हमारे प्रोग्राम के वक्त खत्म होने का करीब आ रहा है तो मैं आपका बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगी। अच्छा हुआ कि इन्होंने तारुफ कराया और इतनी अच्छी खातून से बात हुई। अगर आप मेरी बात अमीर रजी साहब से करवा दें।
जी जी ये कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
जी मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ आपसे। तो सामीन अमीर अली साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अमीर अली साहब अब मैं कहूँगी कि कोई भी अपने वालिद का कोई ऐसा गाना जो कि बिल्कुल आपके लिए उनके लाजवाल जिसको आप समझते हैं जिन्होंने गाया है और आपको, और आप इसे मत डरिएगा कि वो उन्होंने इंडिया में गाया है या पाकिस्तान में, आपको जो बहुत पसंद है चाहे वो पाकिस्तान का हो, क्योंकि आपने
मैं तो इससे नहीं डरूंगा। देखें आर्टिस्ट की कोई डोमेन नहीं होती
जी,
आर्टिस्ट से सरदों से आगे की बात होती है आर्टिस्ट।
जी हाँ तो सुनाइए अपनी पसंद से। आपको
ये गाना जो है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है मेरे वालिद साहब का, वैसे तो मुझे हर गाना ही पसंद है अपने वालिद का
जी।
तो मेहंदी से साहब ने गाया था, दिल सिपाही साहब का लिखा है
जी।
जिंदगी में प्यार की करती है, जिंदगी में तो सच प्यार किया करती, मैं तो महकर मेरे दा तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सच प्यार किया करती, तू मिला है तुझे एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए तोड़ी, एक जरा गम दौरा हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान चाहूंगा, मैं तो महकर मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो तुझे प्यार किया करते हैं।
बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूबसूरत। तो एक मिनट में ज़रा हमें मुख्तसरन बताइए कि अब क्या प्लान है आपका इस वक्त, क्या कोई म्यूज़िक के लिए कोई प्रोजेक्ट है आपका जो कर रहे हो आप?
जी अभी बहुत सारे गाने हैं पाइपलाइन के अंदर, मैं कुछ सूफीज़म के ऊपर कुछ कर रहा हूँ।
अच्छा,
सूफी कलाम के ऊपर जी। तो इंशाल्लाह ये कमिंग ईयर मेरी एल्बम आई
जी
अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी।
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई अमीर अली साहब, मतलब ना सिर्फ ये कि जब आपसे बात हुई तो पता लगा कि आप नाशाद साहब के बेटे हैं, और फिर आपने अपनी बेगम साहिबा से मुतारिफ़ करवाया अनिका से, उनसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो आइंदा भी कोई आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। और अपने सुनने वालों से मैं ये कहूँगी कि अब आप एक गीत सुनिए, क्योंकि कई चीज़ें हो गई हमने आपके गीत कम सुने। तो अमीर अली आपका बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।
गुजलाई है परिया माथे पे तेरे चमके तारों की लड़िया, तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए बिना गुजलाई है परिया माथे पे तेरे चमके तारों की लड़िया, तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
عالمی تجارتی تنظیم نے زور دیا ہے کہ متعلقہ ملکوں کو چاہیے کہ وہ تجارتی کشیدگی کا حل تلاش کریں۔ تنظیم نے انتباہ کیا ہے کہ پابندیوں پر مبنی تجارتی اقدامات عالمی معیشت پر نقصان دہ اثرات مرتب کریں گے۔ جنیوا میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیسا شلائن نے عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او کے صدر دفتر سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تنظیم نے امریکہ اور چین کے درمیان بظاہر تجارتی جنگ کے معاملے میں اثر انداز ہونے سے انکار کیا ہے۔ دونوں ممالک دنیا کی دو سب سے بڑی معاشی قوت ہیں۔ چین نے واشنگٹن کے اس فیصلے پر کہ بعض چینی مصنوعات کی درآمد پر 25% محصولات عائد کیے جائیں گے برابر کا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جنیوا میں قائم ڈبلیو ٹی او نے مخصوص اقدامات کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا، تاہم تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل روبرٹو ازیویدو نے متعدد ٹویٹس بھیجی ہیں جن میں اس بات پر انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ تحفظ مہیا کرنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ ازیویدو کا کہنا ہے کہ ڈبلیو ٹی او نے G20 ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے تجارتی اقدامات کے بارے میں جو مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی ہے اس سے بڑی معیشتوں کی طرف سے تجارتی پابندیوں میں پریشان کن اضافے کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ڈبلیو ٹی او کے سربراہ نے کہا کہ حالیہ معاملات سے معلوم ہوتا ہے کہ پابندی کے مزید اقدامات سامنے آنے والے ہیں۔ ان کے ترجمان ڈین پروزن کا کہنا ہے کہ ازیویدو کو خدشہ ہے کہ تجارتی تعلقات میں خرابی اس سے زیادہ شدید ہو سکتی ہے جس کا اندازہ لگایا گیا تھا، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کہا،
The fallout from these measures is already being felt. Companies are hesitating to invest. Markets are getting jittery. Some prices are rising. With further escalation...
ان اقدامات کے اثرات پہلے ہی سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچا رہی ہیں، منڈیاں بے اطمینانی کا شکار ہیں اور بعض قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مزید اضافے سے اثرات کی شدت میں اضافہ ہوگا جس سے متعلقہ ملکوں میں روزگار اور ترقی پر اثر پڑے گا اور دنیا بھر میں اقتصادی شعبے میں جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈبلیو ٹی او نے امریکہ کے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں کیا تو وہ تنظیم سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ پروزن نے وی او اے کو بتایا کہ وہ ان رپورٹوں سے آگاہ ہیں۔
I'll just say that no US official in Geneva has given any indication in any of the
media. میں صرف یہ کہوں گا کہ جنیوا میں کسی بھی امریکی عہدیدار نے کسی بھی میٹنگ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ امریکہ ڈبلیو ٹی او سے علیحدہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ڈبلیو ٹی او کے سربراہ ازیویدو نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کریں جو بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کا اصل سبب ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس